नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति प्रगतिशील विचारों के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित किया। भारत ने जर्मनी के साथ रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा आवागमन के क्षेत्र में व्यापक समझौतों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त किया। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पारगमन सुविधा की घोषणा की। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, दोनों देश व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय। कहा, भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई साझेदार नहीं। बांग्लादेश के दिग्गज गायक और अवामी लीग के नेता प्रलय चाकी का हिरासत में निधन, परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संचालन नियम 2026 अधिसूचित किए। निष्पक्षता और समावेशिता के लिए नए मानक निर्धारित किए। और नवी मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन हम सभी के लिए मार्गदर्शक है। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी में उन्हें ज्यादा विश्वास रहा है और उनके सामर्थ्य से उन्हें सामर्थ्य मिलता है।
आज स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है। स्वामी विवेकानंद जी के विचार आज भी हर युवा के लिए प्रेरणा है। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, कैसे हम नेशन फर्स्ट की भावना के साथ अपना जीवन जिए, हमारे हर प्रयास में समाज का, देश का हित हो, इस दिशा में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हम सभी के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक है, प्रेरक है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि नवाचारी विचारों, ऊर्जा और दृढ़ संकल्प के साथ युवा शक्ति राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि 2047 में जब देश स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरा करेगा, तब वो आज के युवाओं के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय होगा।
साल 2047 में जब हमारी आजादी के 100 साल होंगे, वहाँ तक की यात्रा भारत के लिए भी अहम है और यही वो समय है जो आपके जीवन में भी सबसे महत्वपूर्ण है। आपका सामर्थ्य भारत का सामर्थ्य बनेगा। आपकी सफलता भारत की सफलता को नई ऊंचाइयां जरूर देगी। मैं आप सभी को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में सहभागिता के लिए बहुत बधाई देता हूं।
इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदर्शनी का दौरा किया और युवा प्रतिनिधियों से बातचीत करके उनके नवाचारों तथा विचारों को जाना। 9 से 12 जनवरी तक आयोजित विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में देश भर से विभिन्न स्तरों पर 50 लाख से अधिक युवाओं ने भाग लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच गुजरात के गांधीनगर में उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल वार्ता के बाद भारत तथा जर्मनी ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया है। द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित इस यात्रा के परिणाम स्वरूप रक्षा, प्रौद्योगिकी और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्रों में 19 समझौता ज्ञापनों तथा 8 महत्वपूर्ण घोषणाओं का आदान प्रदान किया गया।
आर्थिक मोर्चे पर दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीईओ फोरम की स्थापना का स्वागत किया। वे पर्यावरण स्थिरता के लिए जर्मनी ने हरित और सतत विकास साझेदारी के तहत 1.24 बिलियन यूरो की नई फंडिंग प्रतिबद्धता की भी घोषणा की, जो पीएम ई बस सेवा और ग्रीन हाइड्रोजन जैसी परियोजनाओं का समर्थन करेगी। दोनों नेताओं ने हरित प्रौद्योगिकी, नवाचार और जलवायु कार्यवाही में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के निर्णय की भी घोषणा की। उन्होंने भारत के राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत सबसे बड़े ऑफटेक समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने का भी स्वागत किया। इस समझौते के तहत एएम ग्रीन से यूनिपर ग्लोबल कमोडिटीज को ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति की जाएगी। सांस्कृतिक मोर्चे पर जर्मन समुद्री संग्रहालय के सहयोग से अहमदाबाद के पास आए लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, गांधीनगर।
भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि जर्मन चांसलर की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार, कौशल, हरित ऊर्जा तथा जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर महत्वपूर्ण बातचीत हुई।
चांसलर मर्सल्स विजिट दो शॉट।
ये यात्रा भारत जर्मनी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख स्तंभों को मजबूत बनाएगी और गति प्रदान करेगी। जैसा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि एक अनिश्चित वैश्विक वातावरण में भारत और जर्मनी दोनों विश्वसनीय और भरोसेमंद साझेदारियों को महत्व देते हैं। हमें विश्वास है कि इस यात्रा के परिणाम साझा समृद्धि और स्थिरता के लिए हमारी साझेदारी को और भी सुदृढ़ करेंगे।
विदेश सचिव ने कहा कि जर्मनी के माध्यम से भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पारगमन की घोषणा और भारतीय स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों की भर्ती के एक नए तंत्र की घोषणा आवागमन के लिए एक प्रमुख उपलब्धि है।
On the visa transit related issue,
हम ये मानते हैं कि सैद्धांतिक रूप से लिए गए निर्णय एक बार लागू हो जाने पर हमारे लोगों की यात्रा काफी हद तक सरल और सुगम हो जाएगी। इससे लोगों के बीच आपसी संपर्क को और अधिक बढ़ावा मिलेगा।
And promote people to people contact.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय व्यापार अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर 50 अरब डॉलर से अधिक हो गया है। वे गुजरात के गांधीनगर में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्स के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग को विस्तृत कर रहे हैं।
रक्षा और सुरक्षा में बढ़ता सहयोग हमारे आपसी भरोसे और साझी सोच का प्रतीक है। रक्षा व्यापार से जुड़ी प्राथमिकताओं को सरल बनाने के लिए मैं चांसलर मर्च का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हम रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए एक रोडमैप उस पर भी काम करेंगे, जिससे को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के नए अवसर खुलेंगे।
इस अवसर पर श्री फ्रेडरिक ने कहा कि दोनों देश आपसी संबंधों को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने कहा है कि भारत और अमेरिका व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय हैं। भारत में अमरीका के राजदूत का पदभार ग्रहण करने के बाद श्री गोर ने कहा कि नई दिल्ली में व्यापार दोनों देशों के संबंधों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट।
व्यापार हमारे संबंध के लिए महत्वपूर्ण है। हम सुरक्षा, आतंकवाद रोधी सहयोग, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी मिलकर काम करते रहेंगे।
टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड हेल्थ।
वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा के देश के लक्ष्य को प्राप्त करने में गुजरात की महत्वपूर्ण भूमिका है। राजकोट में वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय शिखर सम्मेलन के अंतर्गत आयोजित एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने ये बात कही। उन्होंने बताया कि विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित गुजरात अत्यंत आवश्यक है।
अब से लेके अमृतकाल के 22 वर्षों में जब 2047 में हम विकसित भारत देखना चाहते हैं तो उसके साथ साथ विकसित गुजरात बनाने के लिए 60 लाख करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान भी गुजरात ने बनाया है।
केंद्रीय बजट 2026-27 पहली फरवरी को लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद का बजट सत्र इस महीने की 28 तारीख से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज नई दिल्ली में बताया कि सदन में बजट पेश करने की प्रक्रिया पहली फरवरी को सवेरे 11 बजे शुरू होगी। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि संसद सत्र का दूसरा चरण 9 मार्च को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक चलेगा। भारत बुधवार को राष्ट्रमंडल देशों की राष्ट्रीय संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी नई दिल्ली में करेगा। 3 दिन का ये सम्मेलन 16 जनवरी तक चलेगा। इस सम्मेलन के अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 जनवरी को संविधान सदन के ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल में सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि पिछले 11 वर्षों में भारत के कोयला क्षेत्र ने अपने को अगली पीढ़ी के ईंधन के रूप में पुनर्जीवित किया है। केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी के एक पोस्ट के जवाब में उन्होंने कहा कि ये लेख इस बात को रेखांकित करता है कि कोयला क्षेत्र हरित प्रौद्योगिकी के साथ सहज रूप से एकीकृत होकर विकसित भारत 2047 की दिशा में देश की यात्रा में अपना योगदान जारी रखेगा। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल प्रशासन अधिनियम 2025 के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल प्रशासन नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। ये नियम उत्कृष्ट प्रतिभा वाले खिलाड़ियों को शामिल करने, कार्यकारी समिति की संरचना, राष्ट्रीय खेल निकायों और क्षेत्रीय खेल संघों के सदस्यों के लिए अयोग्यता मानदंड के लिए ढांचा प्रदान करते हैं। प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के सर्वोत्कृष्ट मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। श्री नरेंद्र मोदी ने इसे 2015 में शुरू किया था। आज इस विशेष श्रृंखला में हम बिहार में स्थित 4.5 किलोमीटर लंबे पटना गंगा रेल सह सड़क पुल पर एक नजर डालते हैं।
बिहार के उत्तर दक्षिण कनेक्टिविटी की लंबे समय से चली आ रही समस्या को दूर करने के लिए पटना गंगा रेल कम रोड ब्रिज की कल्पना की गई थी, जिसे आम तौर पर जेपी सेतु कहा जाता है। यह पुल गंगा नदी पर बनाया गया है और इसमें एक ही ढांचे पर रेल और सड़क दोनों की सुविधा दी गई है। इस परियोजना को नवम्बर 2001 में मंजूरी मिली थी और इसकी अनुमानित लागत 3,774 करोड़ रूपए थी। परियोजना के निर्माण के दौरान भूमि से जुड़े विवाद, अतिक्रमण, पुनर्वास और मुआवजे जैसी कई समस्या सामने आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस परियोजना की समीक्षा 25 मार्च 2015 को प्रगति की बैठक में की। बैठक में प्रधानमंत्री ने रेलवे को जमीन सौंपने और मुआवजा जल्द से जल्द देने के निर्देश दिए। नियमित निगरानी और समस्याओं के समय पर समाधान के कारण इस परियोजना के निर्माण कार्य में तेजी आई और इसे 4 मार्च 2022 को पूरा कर लिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 9 जनवरी तक रबी फसलों की बुआई 644 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हो चुकी है। पिछले वर्ष की तुलना में कुल क्षेत्रफल में 17 लाख हेक्टेयर से अधिक की वृद्धि ये दर्शाती है कि रबी फसलों की अच्छी पैदावार हुई है। देश में खुदरा मुद्रास्फीति दर पिछले वर्ष दिसंबर में वार्षिक आधार पर बढ़कर 1.33% पर पहुंच गई है, जो इससे पिछले माह नवंबर में 0.71% थी। मुद्रास्फीति लगातार चौथे महीने भारतीय रिजर्व बैंक के दायरे में न्यूनतम सीमा से नीचे रही। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस संदेश का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया था कि सरकार छात्र लैपटॉप योजना 2026 के अंतर्गत मुफ्त लैपटॉप दे रही है। संदेश में सरकार लाभार्थियों से उनकी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने को कह रही है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी के फैक्ट चेक इकाई ने बताया कि यह दावा फर्जी है और एक घोटाले का हिस्सा है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश के अनुभवी गायक और अवामी लीग के नेता प्रलय चाकी का हिरासत में निधन हो गया। उनके परिजनों ने हिरासत में उन्हें चिकित्सा देखभाल से वंचित किए जाने का आरोप लगाया है। 1980 के दशक के लोकप्रिय गायक प्रलय चाकी अपने भाई मोलय चाकी के साथ बांग्लादेश टेलीविजन पर नियमित रूप से प्रस्तुति देते थे। वे पाबना जिला अवामी लीग के सांस्कृतिक मामलों के सचिव भी रहे। पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नामित आतंकवादी संगठनों के साथ संबंध कई दस्तावेजों और सार्वजनिक स्रोतों से उजागर होते हैं। ये साक्ष्य सिद्ध करते हैं कि पाकिस्तान आतंकवादियों को राजनीतिक संरक्षण और भौतिक सहायता देकर हिंसा को बढ़ावा देता है। एक समाचार एजेंसी के अनुसार पाकिस्तान लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे समूहों का संरक्षण करता है। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों के बावजूद इन समूहों की गतिविधियां अब भी जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में एम्स के चिकित्सा विभाग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस के शर्मा और लेडी हार्डिंग अस्पताल में चिकित्सा विभाग के डॉक्टर अनुपम प्रकाश भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विशेषज्ञों से एंटीबायोटिक दवाओं के दुरुपयोग और इसके दुष्प्रभावों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोहड़ी, मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू की पूर्व संध्या पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि ये त्यौहार देश की समृद्ध कृषि परंपराओं के प्रतीक हैं। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक यूपी वॉरियर्स ने 18वें ओवर में 5 विकेट पर 109 रन बना लिए हैं। इससे पहले आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, युवा शक्ति प्रगतिशील विचारों के साथ राष्ट्र निर्माण के प्रयासों का नेतृत्व कर रही है। श्री मोदी ने नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र को संबोधित किया। भारत ने जर्मनी के साथ रक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा तथा आवागमन के क्षेत्र में व्यापक समझौतों के माध्यम से रणनीतिक साझेदारी को और सशक्त किया। जर्मनी ने भारतीय पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा मुक्त पारगमन सुविधा की घोषणा की। भारत में अमरीकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा, दोनों देश व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए सक्रिय। कहा, भारत से अधिक महत्वपूर्ण कोई साझेदार नहीं। बांग्लादेश के दिग्गज गायक और अवामी लीग के नेता प्रलय चाकी का हिरासत में निधन, परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खेल संचालन नियम 2026 अधिसूचित किए और नवी मुंबई में विमेंस प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तथा यूपी वॉरियर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।